आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है गिनी और मैं पंजाब से एमएससी की पढ़ाई कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है वृक्षों की महिमा। तो सभी बच्चे अपनी किताब में पाठ नंबर 7 निकालें, पेज नंबर 35 पर वृक्षों की महिमा। तो शुरू करें। चलिए, माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। वट सावित्री एक त्योहार होता है, एक दिन होता है जिस दिन जो हमारी मम्मी होती हैं या घर के बड़े होते हैं वो क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं। माँ पूजा की तैयारी कर रही थी, उसकी मम्मी क्या कर रही थी, पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ आज कोई विशेष पूजा है क्या? जब उसने देखा कि उसकी मम्मी किसी पूजा के लिए तैयारी कर रही थी तो गौरी ने पूछा, मम्मी मम्मी आज कोई विशेष पूजा है क्या, आज कोई खास पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। तो उसकी माँ ने उसको क्या बताया कि आज बड़ के वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला नवमी पर आंवले की, दशा माता के व्रत में पीपल की आदि। ऐसा होता है ना, किसी किसी अलग अलग अवसरों पर अलग अलग वृक्षों की, अलग अलग पेड़ों की पूजा करते हैं, जैसे आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की, दशा माता के व्रत में पीपल की, तो ऐसे हम लोग पूजा करते हैं। वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। हम वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? उन्हें बचाए रखने का संदेश और उनको बचाने का प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार भी बहुत सारे क्या कर रही है, जंगलों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए बहुत सारे संरक्षण कार्यक्रम चला रही है। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। वो क्या कह रहा है कि अगर हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, पर्यावरण में संतुलन बनाकर रखना है, तो हमें पेड़ पौधों को ही नहीं बल्कि सारे जीव जंतुओं को भी बचाकर रखना होगा। आगे है, पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। जब उसकी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी तो गौरी और माँ क्या बातचीत कर रहे थे, आइए वो पढ़ते हैं। माँ, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसकी माँ ने क्या बोला कि जब जंगल के वृक्ष, जंगल के पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब उनके खाने की और उनके रहने की समस्या शुरू हो जाएगी। गौरी कहती है, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। तो गौरी अपनी माँ से क्या कहती है, माँ मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, आप उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। तो माँ कहती है, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। काफी समय पहले एक जोधपुर के राजा को अपना महल बनाना था तो उसको उसके लिए किसकी जरूरत थी, लकड़ियों की। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। तो उस राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने के लिए आदेश दे दिया। इस पर वहां पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। तो वहां पर जो लोग रहते थे, विश्नोई समाज के लोग जो वहां पर रहते थे, उन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का विरोध किया था, मना किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जब राजा ने आदेश दिया तो सैनिक खेजड़ली गांव में क्या करने के लिए गए? वृक्ष काटने के लिए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, तब अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई। जैसे ही सैनिकों ने पेड़ को काटना शुरू किया तो वहां पे अमृता देवी विश्नोई थी, वो पेड़ों से चिपक गई। उसने कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। तो अमृता देवी ने क्या बोला, तुम्हें पेड़ों को काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए, तो बाकी गांव वाले जो थे वो भी क्या करने लगे, पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। तो राजा ने और उसके सैनिकों ने अमृता देवी को और गांव वालों को पेड़ों के साथ ही काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने बलिदान दिया था। तो वहां पर खेजड़ी वृक्षों को कटने से बचाने के लिए वहां के लोगों ने, वहां के कितने लोगों ने, 363 लोगों ने अमृता देवी विश्नोई के साथ बलिदान दिया था। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन उस इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं है जहां पर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। चित्र नंबर 7.1 में देखें, चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने का संदेश देती महिलाएं। महिलाएं क्या कर रही हैं, पेड़ों से चिपक गई हैं और पेड़ों को बचाने का संदेश दे रही हैं। ठीक है, गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी, क्यों? गौरी पूछती है कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान क्यों दी, अपने प्राण क्यों त्याग दिए? तो माँ कहती है, गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फूल, फल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। उन्होंने, लोगों ने क्यों अपनी जान दे दी थी, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, अनाज, सब्जियां, ऑक्सीजन, लकड़ियां और औषधियां, ये सब मिलता है। तो इसलिए क्या किया था, उन लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे पेड़ों को बचाने के लिए। आगे है, सोचिए और बताइए। अब आपको सोचना है और बताना है आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जैसे हमने पढ़ा ना, ये लोग किस पेड़ की पूजा करते हैं, दशा माता के व्रत में पीपल की पूजा, वट सावित्री के व्रत में भी किसकी, बड़ की पूजा। तो आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, जैसे तुलसी की पूजा। तो जिस जिस की पूजा की जाती है आपके घर के आसपास या आपके घर में, आप उसे किताब में लिख कर लाएंगे। ठीक है, पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अब आपको ये और पता कर लाना है कि हमारा राज्य वृक्ष किस वृक्ष को बताया गया है। ठीक है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहले लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, चिपको आंदोलन शुरू किया, है ना। अमृता देवी विश्नोई क्या किया था, उसने पेड़ों से चिपक गई थी पेड़ को बचाने के लिए। और आज भी कितने सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए, काटने से बचाने के लिए। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है। पेड़ पौधे लगाना मतलब पेड़ पौधे उगाने की परंपरा, किस अवसर पर आप लोग पेड़ पौधे उगाते हो, जैसे जन्मदिन पर या किसी खास मौके पर। तो जिस अवसर पर आपके यहाँ पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है, उसको आप अपनी किताब में लिख देंगे। ठीक है, आगे है, वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। भंवर और योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्षा कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। भंवर और योगीराज दो बच्चे हैं, वो मेला देखने गए थे। मेला देखने के अगले दिन वो कक्षा कक्ष में किसके बारे में चर्चा करते हैं? मेले के बारे में। आओ जानते हैं कि उन्होंने क्या चर्चा की। भंवर, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया है। वो क्या कह रहा है, जो हमारे स्थानीय लोक देवता है, मतलब जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ के जो देवता है, उनका मेला देखने में बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरन देखने को मिला है। उसने क्या बोला कि मुझे मेले के आंगन के पास बहुत बड़ा चारागाह और ओरन देखने को मिला है। तो योगीराज पूछता है, ये चारागाह और ओरन किसको कहते हैं? तो भंवर कहता है, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियां और बिना जुताई की मशीन देखी है। पेड़ झाड़ियां से देखकर लगता है कि यहाँ कुलाड़ी से कटाई नहीं होती। तो भंवर क्या कहता है कि मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं, बहुत सारी झाड़ियां देखी हैं, बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ और झाड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुल्हाड़ियों से कटाई नहीं होती। तो योगीराज कहता है, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है, तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता है? भंवर कहता है, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। तो भंवर कहता है, मेरे गांव में सभी लोग ऐसी भूमि से लकड़ी नहीं काटते, तो ज्यादा जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज कहता है, गुरुजी चारागाह और ओरन के बारे में जानकारी दीजिए। तो शिक्षक टीचर कहता है, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। तो टीचर क्या कहता है कि बच्चों देखो, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जो जन चेतना है वो बहुत ही पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। मतलब गांव के आसपास की जो भूमि होती है उसको किसी लोक देवता, लोक देवी या किसी संत या महापुरुष के नाम से बचा कर रखते हैं। यह ओरन भूमि कहलाती है। यह भूमि कौन सी कहलाती है? ओरन भूमि कहलाती है। तो योगीराज पूछता है, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं, क्यों? तो शिक्षक कहता है, हाँ बेटा, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते। गोचर, चारागाह व ओरन भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है। तो शिक्षक क्या कहता है कि जो गोचर है, चारागाह है, ओरन भूमि है, इन पर संरक्षण का मुख्य कारण क्या है? स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव, कि वो लोग पर्यावरण के प्रति क्या है, आदर भाव रखते हैं, आदर की भावना रखते हैं, ठीक है। तो योगीराज कहता है, गुरुजी, गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक कहता है, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया है। तो योगीराज क्या पूछता है कि इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून भी कुछ है या नहीं है? तो शिक्षक क्या कहता है कि बिल्कुल, ऐसे सरकार ने बहुत कानून बनाए हैं और इस प्रकार की भूमि के संरक्षण के लिए बहुत कदम उठाए हैं, ठीक है। योगीराज कहता है, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव, वह सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। तो वो क्या कहता है, पर्यावरण को बचाने के लिए जो स्थानीय लोगों में, वहां के रहने वाले लोगों में आदर की भावना है, सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है उससे ग्रामीण क्षेत्रों में ओरन का, गोचर का, चारागाह भूमि का स्थानीय लोगों ने जो भी आदर भाव की भावना बनाई है उससे क्या क्या हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में ओरन, गोचर, चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। तो गुरुजी क्या, योगीराज क्या बताता है कि ऐसे ही राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा और परंपरा के द्वारा वनों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे है पेज नंबर 37 पर, सोचिए और बताइए आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं। जैसे हमने अभी पाठ में पढ़ा, जो भूमि संरक्षित की जाती है उसको क्या कहते हैं, ओरण या चारागाह भूमि। तो आपके यहाँ पे क्या कहते हैं संरक्षित भूमि को, या आप घर से पता कर कर लाइएगा। ठीक है, आगे है वृक्षों को काटने से बचाने के लिए प्राचीन गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पहले के लोग कैसी, मतलब उन लोगों के अंदर किस प्रकार की जन चेतना थी, लोगों को क्या क्या मिलता था वृक्षों से, फल, फूल, औषधियां। तो वो नहीं चाहते थे कि हम जो हमारे वृक्ष हैं उनको काटें, इसलिए वो क्या करते थे, वृक्षों को काटने के लिए आंदोलन चलाते थे, काटने से बचाने के लिए आंदोलन चलाते थे। गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए, बताओ। अभी हमने पढ़ा गोचर, ओरण और चारागाह भूमि को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए, वन संपदा संरक्षण, ऐसे ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसके अंतर्गत क्या था, वृक्षों को काटने नहीं दिया जाता था। बाकी हमने पाठ में पढ़ा है, आप पढ़कर इसके अंदर लिख कर लाएंगे। ठीक है, अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें। आप अपने जन्मदिन पर या नए वर्ष के अवसर पर या किसी ऐसे विशेष दिन पर जिसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उस पौधे को बड़ा करने का संकल्प लें, उसकी पूर्ण देखभाल करें और उसकी क्या करें, पूरी की पूरी देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम सब मिलके वृक्षों को बचा सकते हैं और उन्हें काटने से बचा सकते हैं। आगे है चर्चा कीजिए, जंगल किसे कहते हैं। तो बताइए जंगल किसे कहते हैं, ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, और वहां पे क्या करते हो, जानवर रहते हो, पेड़ पौधों को अपना आवास बनाकर, तो उसे क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा, बताइए। अगर जंगल में वृक्ष ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वहां पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनमें क्या होगा, उनका घर नहीं होगा, उनके रहने की जगह उनसे छिन जाएगी, है ना। तो आगे है जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, है ना। आगे है क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं, क्या आपने अपने विद्यालय में कभी पेड़ लगाया है, अगर नहीं लगाया तो किसी विशेष अवसर पर अवश्य लगाएं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं, आपके घर में पेड़ पौधे होंगे, आप उन्हें पानी देते हैं, उन्हें ढककर रखते हैं, तो जिस प्रकार आप पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं उस प्रकार आप इसके अंदर लिख दीजिए, ठीक है। आगे है, नीचे तालिका में राजस्थान के अभयारण्य दिए गए हैं, उनके सामने उन जिलों के नाम हैं जहां वे स्थित हैं, ठीक है। राजस्थान का मानचित्र लेकर उन जिलों को अंकित करो जहां ये अभयारण्य स्थित है, ठीक है। अभयारण्य क्या होते हैं? जंगल, जू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चित्र नंबर 7.2 में देखिए राजस्थान का मानचित्र दिख रहा है आपको, पेज नंबर 37 पे जहां पे हमको राजस्थान का मानचित्र दिख रहा है, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, पाली, ये सब आपको दिख रहा है। आगे देखिए, उद्यान या अभयारण्य और जिला, रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, ये कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो आपको यहाँ माधोपुर जिला दिखेगा, उसमें आप इसका नाम लिख देंगे इस उद्यान का। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घना पक्षी विहार, ये कहाँ है? भरतपुर में। फिर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में, तो ये आप इस मानचित्र के अंदर अंकित करेंगे, ठीक है। आगे है खाद्य श्रृंखला, गोरी वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? गोरी पूछती है अपनी मम्मी से, मम्मी मम्मी जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको खाना कौन खिलाता है? तो माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। हमने पढ़ा था ना कि शाकाहारी और मांसाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी क्या होते हैं? वो जीव जंतु जो क्या खाते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं। और मांसाहारी क्या होते हैं? वे जीव जंतु जो मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उसकी माँ ने उसको क्या बताया कि जो जंगल में शाकाहारी जानवर है वो पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जो मांसाहारी जानवर है वो छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। देखो, पौधे, पौधे को कौन खाता है? खरगोश। खरगोश को कौन खाता है? लोमड़ी। लोमड़ी को कौन खाता है? शेर। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला, ठीक है। अब आपको सूची बनानी है कि कौन किसको खाता है। भोजन दे रखा है और खाने वाला जीव, जैसे पौधे, पौधे कौन कौन खाता है? गायें, खरगोश, हिरण। हिरण को कौन खाता है? शेर। मुर्गी को कौन खाता है? जैसे हम इंसान काट कर खाते हैं ना, बीज। बीज कौन खाता है? छोटे जानवर। चूहा, चूहा कौन खाता है? बिल्ली, ठीक है। आगे है, चित्रों को देखकर बताओ कि कौन किसको खाता है। खाद्य श्रृंखला, देखो ये आपको क्या दे रखा है, मेंढक, सांप और क्या है, एक पक्षी दे रखा है, कबूतर है, पता नहीं कौवा है, है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन किसको खाता है। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब कि पेड़ पौधों और जीव जंतु के भोजन के आधार पर जो संबंध होता है उसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। सोचिए और बताइए। अब आपको सोचना है और बताना है। तोता क्या खाता है? फल खाता है, फूल खाता है, है ना। गाय क्या खाती है? घास खाती है, चारा खाती है। गिलहरी क्या खाती है? छोटे छोटे फल खाती है, पत्ते खाती है, है ना। तो ये सब आप लिख के लाना। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, है ना। हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ों से फल, फूल, औषधियां, है ना, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें मिलते हैं। तो पेड़ हमारे लिए क्या है? बहुत ही जरूरी है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। पेड़ों का संरक्षण करने के लिए, उनको बचाने के लिए अलग अलग क्षेत्र में इनकी पूजा करने का बहुत ही महत्व है। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया। है ना, हमने पढ़ा था ना कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना बलिदान दे दिया था। जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है, हमने पढ़ा ना अभी। आगे है जाना समझा अब बताइए। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। हमने अभी पढ़ा पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। जैसे पौधे, पौधे को कौन खाता है, खरगोश, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, ठीक है। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं, हमने आज पाठ में पढ़ा अभ्यारण्य के बारे में, तो आप जो समझते हैं अभ्यारण्य से इसके बारे में आप लिख कर लाएंगे, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। चिपको आंदोलन क्या था, पेड़ों को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे, इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था, ठीक है। पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, छाया मिलती है, औषधियां मिलती हैं और ऑक्सीजन मिलती है। तो पेड़ों से जो जो हमको लाभ होते हैं उसकी आपको सूची बनानी है, ठीक है। वृक्ष लगाओ जंगल बचाओ, तो हमें हर विशेष अवसर पर क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए और जंगल को बचाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जीव जंतुओं की निराली दुनिया।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।